तो आज हम यहाँ पर श्री बलराम जयंती के महामहोत्सव के उपलक्ष में सब लोग उपस्थित हैं। आप सबका इस दिव्य महोत्सव में स्वागत है। आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर इस दिव्य महोत्सव को मनाने के लिए आए हैं। और ये महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले संडे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और बलराम जी भगवान के बड़े भाई हैं, साथ साथ भगवान के प्रथम अवतार हैं, जिनका वर्गीकरण भगवान के लीला अवतार में किया जाता है। भगवान ने केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और अपने लीलाओं का विस्तार करने के लिए प्रथम लीला अवतार के रूप में श्री बलराम जी के रूप में अवतार लिया। और इनका अस्तित्व जो है इस पूरे निर्माण में इतना महत्वपूर्ण है, इनकी कृपा के बिना श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करना नामुमकिन है। अगर हमें जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, भगवान के राधा और कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम भक्ति का उदय करना है अपने हृदय में, तो इसके लिए बलराम की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और जिस दिन दिव्य व्यक्तियों का अवतरण दिन होता है शास्त्र के अनुसार, उस दिव्य व्यक्ति के जन्म दिवस पर उनकी कृपा बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। इसलिए हम आपको विनती कर रहे थे कि आप उनको पुकारिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में जो हम राम का नाम पुकारते हैं उसके तीन अर्थ हैं। एक है स्वयं कृष्ण जो सबको आनंद देते हैं, दूसरे हैं श्री बलराम जी और तीसरे हैं प्रभु रामचंद्र भगवान। तो श्री बलराम जी का जन्म श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था और गोकुल में नंद महाराज का जो घर था वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आज जगन्नाथ जी का मंदिर है और उसमें रोहिणी और वसुदेव की मूर्तियाँ भी हैं। वो स्थान पर बलराम जी का आविर्भाव हुआ था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो अस्तित्व है वो छह ऐश्वर्यों से और 64 कलाओं गुणों से संपन्न है। और बलराम जी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उनमें भी छह ऐश्वर्य हैं और 64 कलाएं हैं। इसलिए केवल एक ही फर्क बचता है, दो ही फर्क बचते हैं, उनके रंग में और उनके भाव में। भगवान कृष्ण घनश्याम वर्ण के हैं, जो जल से भरा हुआ बादल है अभी बरसने के लिए तैयार है, ऐसे मेघ का वर्ण भगवान कृष्ण का है। और शरद ऋतु के जो सफ़ेद रंग के बादल हैं उस रंग के बलराम जी हैं। भगवान कृष्ण मूल पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और बलराम जी उनके प्रथम विस्तार होने के नाते सेवक भगवान हैं, सर्विटर गॉड हेड, यानी कि उनका अस्तित्व जो है वो केवल भगवान की सेवा के लिए है। भगवान के भक्ति में जो पांच रस है उन पांचों रसों में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में वो भगवान के धाम में अपने आप को विस्तारित करते हैं, भगवान की वस्त्र, भगवान की मुरली, भगवान का मुकुट, भगवान के अलंकार, उनकी बांसुरी, उनका बिस्तर, उनके जूते, और गौलोक धाम और भौम वृंदावन धाम, इस प्रकार से जो जो वस्तुएं भगवान उपयोग में लाते हैं वो सारी वस्तुएं बलराम जी का विस्तार है। इस प्रकार से शांत रस में परिपूर्ण होकर भगवान की वो सेवा करते हैं। दास रस में अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं, जब भगवान लीला करते हैं थक जाते हैं तो वनों में जब भगवान निवास विश्राम करते हैं तो उनके चरण कमल अपने गोद में लेकर अपने कोमल हाथों से उनके कोमल चरणों को मालिश करते हैं और उनको आनंद देते हैं। और जो भी सेवा की आवश्यकता होती है व्यवस्था की, वो सारी व्यवस्था बलराम जी कर देते हैं। साक्ष्य रस में वो भगवान की सखा भाव में मित्रता में सेवा करते हैं। मित्रता का सेवा का मतलब क्या है कि इसमें मित्रता में कोई भगवान ऐसी भावना नहीं होती। मित्रता में लोग झगड़ते हैं, खेल खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, कभी नाटिका करते हैं, कभी खाते हैं, कभी जूठी खाते हैं, और कभी गेम में हार जाते हैं तो उनको कंधे पर भगवान को बिठाकर राउंड देना पड़ता है, कभी वो जीत जाते हैं तो भगवान के कंधे पर बैठते हैं, इस प्रकार के जो चटपटी लीलाएँ हैं, साथ में माखन चुराते हैं, साथ में गोपियों को आनंद देते हैं, राक्षसों को मारते हैं, इस प्रकार से जो मित्रता की लीला है उसमें भगवान की सहायता करते हैं और वात्सल्य रूप में भी सेवा करते हैं, क्योंकि वात्सल्य का कारण यह है कि वो भगवान के बड़े भाई हैं। यशोदा मैया के आदेश के अनुसार, रोहिणी जी के आदेश के अनुसार वो ये देखभाल करते हैं कि कहीं भगवान कुछ खा न ले या भूखे न रह जाएं, या कहीं जो धोखादायक स्थिति है वहाँ पर न चले जाएं, जमुना किनारे न चले जाएं और खेलते खेलते जमुना जी में न गिर जाएं। इस प्रकार से भगवान के सुरक्षित जो रखने की विधि है वो अपने माता के आदेश के अनुसार वो देव संभालते हैं। और माधुर्य रस जो प्रेम का रस है, जो युवा युवतों में होता है, उस प्रेम के भाव में वो अपने आप को अनंग मंजरी नाम के गोपी के रूप में विस्तारित करते हैं, जो राधा रानी की छोटी बहन है। और भगवान की जो रास लीलाएँ हैं, भगवान का जो श्रृंगार रस है, उसमें वो भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे अनोखे स्वरूप में बलराम जी का स्थिति है। कोई भी जीव जो है इस विश्व में निर्माण भगवान करते हैं, उनको जन्म देते हैं, उनका केवल एक भाव होता है, या तो वो शांत रस में हो सकते हैं, या तो दास्य में हो सकते हैं, या तो वात्सल्य में हो सकते हैं। ये पांचों में से किसी एक का आविर्भाव स्थाई भाव के रूप में जीव में प्रकट होता है। लेकिन बलराम जी ऐसे दिव्य भगवान के अवतार हैं जो पांचों रसों में अविरत भगवान की सेवा करते रहते हैं, और सेवा भाव ही उनके व्यक्तित्व का, अस्तित्व का और सेवा का और लीलाओं का एक अविभाज्य भाग है। वो अपने दो हाथों में गदा और हल धारण करते हैं, वो नीले रंग की धोती पहनते हैं, और जिस प्रकार से वनों में जब विहार करते हैं और खड़े हो जाते हैं तो भगवान के कंधे पर हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, ऐसे उनकी दिव्य स्थिति है। तो ये बलराम जी का जो अस्तित्व है, ये मूल रूप में शक्ति के विषय में, गर्ग मुनि ने जब कृष्ण बलराम का नामकरण किया तस्व ने उन्हें कहा था कि इनके अंदर अनंत शक्ति होगी, उस शक्ति से सब लोग प्रभावित हो जाएंगे, सबको आनंद मिलेगा, इसलिए उनका नाम बलदेव होगा। इनके द्वारा जो आनंद सबको मिलेगा उसकी वजह से उनका नाम रमण रखा जाएगा, यानी कि राम। और चूंकि यदुकुल और नंद महाराज का कुल, इनके बीच में इनकी वजह से संबंध प्रस्थापित होगा, क्योंकि इसका रहस्य ये था कि अनंत शेष जब देवकी के सातवें गर्भ के रूप में विराजमान हुए तो भगवान ने माया देवी को आदेश दिया, दुर्गा देवी को, कि इस गर्भ को संकर्षित करके आप रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना, क्योंकि रोहिणी भगवान की, बलराम की चिरंतन माता है, इटर्नल मदर, और अनंत शेष बलराम जी के ही विस्तार हैं। तो अनंत शेष को देवकी के गर्भ से संकर्षित करके माया देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है, और रोहिणी के गर्भ में जो बलराम जी मूल स्वरूप में विस्थापित विराजमान थे उसमें ये रूप जो है वो विलीन हो जाता है। इसलिए रोहिणी का कुल और यदुकुल, इन दोनों को जोड़ने का इनका एक विशेष रूप की सेवा है, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी रखा गया है। तो आज हम उनके दिव्य बल के बारे में चर्चा करेंगे। उनके तो अनंत गुण हैं, जैसे हमने कहा 6 ऐश्वर्य 64 कलाएं भी उनके अंदर हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति है, दो प्रकार की शक्तियां होती हैं हम सब जानते हैं, एक है आध्यात्मिक शक्ति और एक है भौतिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति वो होती है जिससे हम हमारे हृदय के अंदर, हमारे आत्मा के ऊपर जो 6 शत्रुओं का आवरण पड़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, इनको रोकने का, इनके प्रभाव में न आने की जो शक्ति है, जिसको हम इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, ये आध्यात्मिक शक्ति बलराम जी के द्वारा प्राप्त होती है। और बलराम जी की शक्ति ऐसी है कि इनकी शक्ति का अंश भी हमें जब कृपा के रूप में प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में शक्ति न होते हुए, क्षमता न होते हुए भी हम दिव्य कार्य करते हुए नजर आते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए भी शक्ति आवश्यक है, वो शक्ति भी बलराम की तरफ से प्राप्त होती है। सारांश में कहा जाए तो बलराम जी पूरे आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बलदेव जी के रूप में प्रकट हो जाती है, और साथ साथ जो भौतिक शक्तियां हैं जिसके द्वारा हम शरीर का बल प्राप्त करते हैं, प्रभाव प्राप्त करते हैं, इन्फ्लुएंस प्राप्त करते हैं, वो भी शक्ति बलराम जी की ओर आती है, ओर से आती है। तो ये बलराम जी की शक्ति इतनी दिव्य थी, इसकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है कि एक बार जो भगवान की एक पत्नी का नाम है जाम्बुवती, जो जाम्बुवान नाम के भगवान राम के सेवक थे, वृक्षराज जाम्बुवान, उनकी एक कन्या है और वो अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर देते हैं और इनका एक पुत्र होता है सांब, सअम्ब, यानी कि जो माता से बहुत ही अनुरक्त और आसक्त थे। तो ये सांब जो है वो जब युवावस्था में आए तो बड़े वीर पुरुष थे, महारथी थे, बड़े सुंदर थे, सर्वगुण संपन्न थे, यदुकुलोत्पन्न थे, भगवान कृष्ण के साक्षात पुत्र थे, इसकी वजह से उनके अंदर सभी दिव्य गुण विराजमान थे। और ये सांब जो है वो दुर्योधन की जो कन्या है लक्ष्मणा, इन पर उनका प्रेम हो जाता है और वो जाकर लक्ष्मणा जो दुर्योधन की कन्या है उसको ले लेते हैं हस्तिनापुर जाकर, और उसको रथ में लेकर जा रहे होते हैं। तब दुर्योधन आदि सभी कौरवों को गुस्सा आता है और वो उस पर आक्रमण करते हैं। दुर्योधन, कर्ण, इस प्रकार के जो कौरव हैं वो भी महारथी हैं, सब लोग मिलकर, यहाँ तक कि भीष्मदेव भी, कर्ण भी इस युद्ध में भाग लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कौरवों का जो इबरत है, उनकी इज्जत है, उसका संभाल है। यदुकुल का बालक हमारी कन्या को ले जा रहा है पत्नी के रूप, तो क्षत्रियों के रूप, क्षत्रियों की पद्धति से वो उनको ले जाते हैं, फिर भी उनका आक्रमण होता है और महारथी के रूप में जो सांब है वो बड़ा कौशल दिखाते हैं, हर एक योद्धा को परास्त करते हैं। जब एक एक का युद्ध होता है तो उसका कौशल देखकर सब प्रभावित होते हैं और एक साथ उस पर आक्रमण करते हैं। जब एक साथ आक्रमण करते हैं तो सांब जो है वो परास्त हो जाता है और सांब को वो कैद कर लेते हैं और लक्ष्मणा को वापस ले जाते हैं। ये खबर द्वारका में पहुंचती है और जब द्वारका में पहुंचती है तो सभी यदुकुल जो है उसके वीर जो है सात्यकी, प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण और सभी जो यादव हैं वो सब क्रोधित हो जाते हैं। उनको क्रोध इसलिए आता है कि एक महारथी को एक महारथी के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन कौरव कुल के सारे महारथी ने मिलकर एक सांब के ऊपर हमला किया और बड़े ही शर्मीली, मतलब इसका शर्म आना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने युद्ध किया और उनको कैद किया है। तो सभी यादव वीर जो है क्रोध से खौल उठते हैं और सोचते हैं कि अभी तुरंत हस्तिनापुर पर आक्रमण किया जाए, लेकिन बलराम जी खड़े होते हैं और बोलते हैं, वो जानते हैं कि झगड़ा करने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है, किसी भी न्यून कारण से भी झगड़ा हो सकता है, इससे क्या लाभ है, हम जाएंगे हस्तिनापुर और कौरवों को समझाने का प्रयास करेंगे और मुझे ये आशा है कि अच्छी सलाह देने के पश्चात कौरव मान जाएंगे और हम लक्ष्मणा को हमारी बहू के रूप में द्वारका लौट कर लेके आएंगे। लेकिन बलराम जी क्षत्रिय भी हैं, इसलिए वो सेना लेकर अपने मित्रों के साथ में हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं और हस्तिना की सीमा के ऊपर जो गांव है वहाँ पर अपना तंबू लगाते हैं और विश्राम करते हैं। और उद्धव जो यादवों के सेनापति हैं, जो भगवान के और बलराम जी के, कृष्ण भगवान के, कृष्ण और बलराम जी के भतीजे भी हैं और सखा भी हैं, वो उनको संदेश देकर भेजते हैं कि बलराम जी हस्तिनापुर के सीमा पर आए हैं और इस कारण से वो आए हैं जो इस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो जैसे ही उद्धव जी आते हैं संदेश लेकर, संदेश सुनाते हैं गुरु दरबार में, तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि क्योंकि बलराम जी का जो पोजीशन है, उनका जो आदर, गौरव, बल, शक्ति, सामर्थ्य, प्रभाव, ये सबको वो जानते हैं, इसलिए बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से और आदर्श भाव से वो सब भेंट वस्तुओं को लेकर, स्वागत की सामग्री लेकर, आरती पूजा की सामग्री लेकर वो हस्तिनापुर की सीमा पर आ जाते हैं और अपने भाव से, प्रेम से उनका सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, चरण धोते हैं, पूजा करते हैं और उनका स्वागत पर मीठे मीठे वचन भी बोलते हैं। उसके पश्चात बलराम जी खड़े हो जाते हैं, स्वागत के लिए धन्यवाद करते हैं और फिर राजा उग्रसेन के प्रतिनिधि के रूप में राजा उग्रसेन का जो आदेश है वो कौरवों को सुनाते हैं। वो कहते हैं यदुकुल राज, राजा उग्रसेन का ये आदेश है कि आपने बड़े ही गलत तरीके से सांप के साथ युद्ध किया है और उसको कैद करके रखा है। उनका यह आदेश है कि तुरंत सांप को रिहा किया जाए, मुक्त किया जाए और उसका विवाह लक्ष्मणा के साथ करके उन दोनों को आदर सहित द्वारका में लौटाना है। तो जैसे ही ये आदेश पर वाणी अपने गंभीर आवाज में बलराम जी सुनाते हैं, कौरवों को बहुत क्रोध आता है और दुर्योधन जैसा योद्धा वहां पर खड़े होकर अपमानजनक वाक्य बोलने लगता है। क्रोध में वो कहता है कि क्या समझते हैं अपने आप को युद्धकुल के लोग, हमारे साथ विवाह होने के लिए, विवाह होने की वजह से, विवाह के संबंध की वजह से उनको हमने राज दिया है, राज्य का सर दिया है, राज्य करने की अनुमति दी है और जो राजकीय चिन्ह होते हैं, रॉयल इंसिग्निया, उनको उन्होंने हमने उनको दिया है और वो हमारे योग्य उनको बनाया है, लेकिन अभी हमारी कन्या को विवाह करने के योग्य वो नहीं है। अगर पैर की जूती पैर से छोड़कर मुकुट के स्थान पर आना चाहती है तो उसको वहीं रोक देना चाहिए। उसी प्रकार से ये यदुकुल के लोग हमारी कन्या से विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारी ये इच्छा है कि तुरंत ही इनके जो राज दंड है उनका वो छीन लिया जाए और इसके आगे उनको राज दंड को लेकर चलने का अधिकार उनको नहीं देना चाहिए। जैसे इस प्रकार के वचन बोलते हैं और बोलकर चले जाते हैं तो बलराम जी समझ जाते हैं कि ये सलाह करने के लोग योग्य नहीं हैं, इनके ऊपर बल का प्रहार करना पड़ेगा। जैसे ही ये सब बड़ी बड़ी क्रोधजनक गर्व से भरे हुई दम्भ से भरे हुई बातें करते हैं और चले जाते हैं, तुरंत ही बलराम जी अपने हल को आह्वान करते हैं और हल को एक प्रहार से हल की नोक पर पूरे हस्तिनापुर को पृथ्वी के तल से अलग कर देते हैं। बोल बलदेव भगवान की। अभी हम पुणे में बैठे हैं, हाँ अगर महाराष्ट्र से हमारा पुणे शहर अभी अलग किया जाए तो हमारी क्या स्थिति होगी, हाँ हम लोग इतना आराम से नहीं बैठ सकते। तो ये बड़े गर्व से जा रहे हैं लौटकर, लेकिन हस्तिनापुर को पूरे की पूरा पृथ्वी के तल से उखाड़ कर वो भी अपने हल्के एक नोक पर बड़ी तेजी से हवा की गति से वो हस्तिनापुर को जमुना जी की ओर ले जाते हैं। मतलब इस समय हस्तिनापुर हवा में है, पूरा सारे राजकीय प्रासाद, सारे महल, सारे रानियां, सारे लोग, हस्तिनापुरवासी, सारे कुरुवंश के लोग, महारथी लोग, सब लोग उसके अंदर है और वो हवा गति से उसको खींचा जा रहा है जमुना जी को डुबाने के लिए। वो चाहते हैं कि हस्तिनापुर के लोग इतने गर्व और दम्भ से भरे हैं, सबको अपने कुल के साथ, परिवार के साथ, योद्धाओं के साथ में जमुना में डुबा देकर इनका लक्षण और चिन्ह मिटा देना चाहिए। इस भावना से वो हस्तिनापुर को उठाकर हवा की गति से ले जा रहे थे तो आप समझ सकते हैं हस्तिनापुर में क्या हुआ होगा। सब हाहाकार मच गया, सारी स्त्रियां, वृद्ध लोग, बालक, महारथी, सभी लोग भयभीत हो गए और भाग भाग कर सब लोग हस्तिनापुर की सीमा के पास आए और हाथ जोड़कर उन्होंने लक्ष्मण बलराम जी को विनती की कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बल को ठीक तरह से पहचाना नहीं। आचार्यगण लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि वास्तविक रूप में जब सांब ने उनके साथ में युद्ध किया था उसी समय सांब के पराक्रम को वो देख चुके थे और उनके मन में बड़ा आदर भी उत्पन्न हुआ था कौरवों के मन में, लेकिन जानबूझकर उन्होंने 6 योद्धाओं ने साथ मिलकर उनसे युद्ध किया और उसको कैद कर लिया। इसी कारण कि वो कृष्ण बलराम जैसे उनके जो नेता हैं, श्रेष्ठ यादव वीर हैं, उनका भी गौरव देखना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर उन्होंने बलराम के क्रोध को आह्वान देने वाली बातें की वहाँ पर, क्योंकि वो बलराम जी का बल देखना चाहते थे। और जब उन्होंने ये बल का प्रदर्शन देखा तो भी बड़े प्रभावित हो गए और भीष्म आदि, दुर्योधन आदि सभी कुरुवीर जो हैं वो आए और साथ साथ में कैसे आए, अपने आगे लक्ष्मणा, उसके बाद में सांब और पीछे वो लोग ताकि कोई उनको संदेह न रहे कि उन्होंने जो कहा है वो पूरा हमने कर दिया है। हाँ, इसलिए सांब को और लक्ष्मणा को रथ में आगे करते हुए सारे गुरुवीर पीछे से आए तो उनको देखकर बलराम जी शांत हो गए। उन्होंने अपने हल के नोक पर जो हस्तिनापुर था उसको फिर से जगह पर रख दिया। जैसे हमारे बालक खेलते हैं ना, वो नकाशे लेके आते हैं भारत का, महाराष्ट्र को रखते हैं, फिर राजस्थान को रखते हैं, फिर मध्य प्रदेश को रखते हैं, कभी निकालते हैं कभी रखते हैं, ऐसे खेल खेल में जैसे बालक लोग खेलते हैं वैसे बलराम जी ने हस्तिनापुर को विश्व के नकाशे से उखाड़ दिया था, फिर से उन्होंने वहाँ रख दिया, फिर सब शांत हो गया, सभी गुरुवीर आए और उन्होंने, मुझे भी ठीक से परफेक्टली याद नहीं है, कुछ 10,000 सोने के रथ, 12,000 सुंदर अलंकार से सुशोभित घोड़े, 10,000 दासियां सोने के अलंकार से सुशोभित और बहुत सारा सोना, बहुत सारे चांदी, ऐसे बहुत सारे दहेज में उनको दिए भेंट के रूप में, और लक्ष्मण के बड़े आदर के साथ में उन्हें सांब को सौंप दिया और सब लोग बड़े प्रेम से वो लौट के द्वारका में चले गए और द्वारका में नई बहू का बड़ा अच्छी तरह स्वागत किया गया और विवाह उत्सव भी संपन्न हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बलराम की शक्ति का केवल एक प्रदर्शन है। दूसरी कथा आती है कि बलराम जी के अंदर क्या बल है समझने के लिए। जब भी वो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय युद्ध होने के पहले उनकी इच्छा थी कि उनको दुर्योधन पर प्रेम था और पांडवों पर, कृष्ण भगवान पर भी प्रेम था और उनके बीच में युद्ध था ये। उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया कि युद्ध न किया जाए, लेकिन फिर भी युद्ध होने की बात अटल हो गई, युद्ध होना ही था। जब ये स्थिति आ गई तो वो तीर्थ यात्रा चले गए, क्योंकि उनको इस वाद विवाद में और अधिक पढ़ने की इच्छा नहीं थी। जब वो तीर्थ यात्रा चले गए तो वो नैमिषारण्य आए और नैमिषारण्य में जब आए तब वहाँ पर विश्व कल्याण के लिए हजारों साल चलने वाला एक यज्ञ संपन्न हो रहा था, जिसमें रोमहर्षण सूत नाम के एक व्यक्ति जो व्यासदेव के शिष्य थे, वो व्यासासन पर बैठकर लोक कल्याण के लिए प्रवचन कथा आदि कर रहे थे। उस पूरे कार्यक्रम में यज्ञ अनुष्ठान कथा प्रवचन भगवान की लीलाओं का वर्णन, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए थे और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर दीर्घ आयु का वरदान रोमहर्षण सूत को दिया था। ये भी वरदान दिया था कि जब तक ये हजारों साल का यज्ञ चलता रहेगा तब तक इसके सारे इंद्रिय शक्ति से भरे रहेंगे और ये भी वरदान दिया था कि इनके कार्य में, इनकी कथा में, इनके अनुष्ठान में, यज्ञ में कहीं भी बाधा नहीं आएगी। इस सारे वरदानों को देकर उनको समृद्ध कर उनको उन्होंने व्यासासन पर बिठाया था। और इस रोमहर्षण सूत का ये इतिहास था, उसको सूत इसलिए कहा गया था क्योंकि वो ब्राह्मण माँ और क्षत्रिय पिताजी इनके संतान थे। ऐसे संतान को प्रतिलोम संतान कहते हैं, यानी कि अगर उच्च वर्ण की माता और निचले वर्ण की पिताजी रहेंगे तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं और संतान को भी प्रतिलोम संतान कहते हैं। अगर उच्च वर्ण का पिताजी और निचले वर्ण की माता रहेगी तो उस विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं और संतान को भी अनुलोम संतान कहते हैं। तो ये प्रतिलोम संतान के रूप में उनका अवस्था थी, लेकिन चूंकि उन्होंने व्यासदेव से दीक्षा ग्रहण की इसलिए उनको ब्राह्मण का पद प्राप्त हो गया था। जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जो जन्म से और वर्ण, जन्म से और किसी का वर्ण नहीं बनता है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इसके जो गुण होते हैं जो उत्पन्न करता है अपने व्यक्तित्व में और उसके अनुसार कर्म करता है, वो कर्म के अनुसार और गुणों के अनुसार ये जो वर्ण है वो उत्पन्न होता है, केवल जन्म से वर्ण उत्पन्न नहीं होता है। इसी के उपलक्ष्य में जब कोई व्यक्ति अगर शूद्र भी है, अगर निचली योनि में भी जन्म जाति में उसका जन्म हो गया है वर्ण में, अगर वो अपने आप में ब्राह्मण के, भक्त के, वैष्णव के गुण संपन्न कर लेता है और उस पर श्रेष्ठ गुरु का अनुग्रह होता है तो उसकी कृपा से ऐसा व्यक्ति यज्ञ भी कर सकता है, अनुष्ठान भी कर सकता है, शास्त्र का अध्ययन भी कर सकता है और वो ब्राह्मण का कर्म भी कर सकता है। तो व्यासदेव की कृपा से वो ब्राह्मण के सर पर आए थे और वहाँ पर प्रवचन कर रहे थे और हजारों ब्राह्मण और ऋषि और भक्तगण वहाँ पर बैठकर विश्व कल्याण के लिए उनका प्रवचन सुन रहे थे। जैसे ही बलराम जी वहाँ प्रवेश करते हैं सारे श्रोतागण उठकर खड़े हो जाते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जो बुढ़े होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं और अपने स्थिति के अनुसार बलराम जी को आशीर्वाद देते हैं एक वरिष्ठ होने के नाते। लेकिन श्रोताओं में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उठकर खड़े नहीं होते हैं और उनको वंदन नहीं करते, तो सबका स्वीकार करते हैं वंदन बलराम जी, क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम परम भगवान हैं और उनकी मालाएं स्वीकार करते हैं, उनके चरण धोए जाते हैं, उनको आसन में विराजमान किया जाता है, फल फूल दिए जाते हैं, पूजा की जाती है उनकी। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति नहीं उठता है, वो है व्यास आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति रोमहर्षण सूत। वो ये सोचता है कि मुझे, मैं भी व्यास आसन पर बैठा हूँ, इसलिए मुझे किसी को दंडवत प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि अगर हम व्यास आसन पर बैठकर कथा कर रहे हैं तो हमें किसी को उठकर दंडवत प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारे गुरु महाराज और स्वयं भगवान अगर उस सभा में पधारते हैं तो जरूर हमारी कथा को समाप्त करते हुए उतरकर गुरु महाराज और भगवान को वंदन करना चाहिए। तो ये नियम जरूर वेद में दिया है कि उसका उठना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर आए हुए व्यक्ति कुछ साधारण जीव नहीं थे, स्वयं भगवान के प्रथम अवतार सेवक भगवान बलराम जी थे। तो बलराम जी ने सोचा कि ये व्यक्ति हजारों ब्राह्मणों को मार्गदर्शन करने के लिए व्यास आसन पर बैठा हुआ है, अगर इसके व्यवहार को नहीं सुधारा जाएगा तो सारे जो लोग हैं वो आने वाली जनता है, आने वाली पीढ़ियां है, इसी व्यवहार को आदर्श मानेगी, क्योंकि वे नेता के रूप में वहां बैठे हैं, एक लीडर के रूप में जो आदर्श होना चाहिए और जिसके आदर्श को लोग देखेंगे और चलेंगे उसके ऊपर। इसलिए बलराम जी कहते हैं कि व्यासदेव की दीक्षा प्राप्त होने पर इस व्यक्ति को इतना प्रगाढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन इतना प्रगाढ़ ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी इस व्यक्ति के अंदर नम्रता और वैष्णवों के शिष्टाचार के गुण उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है? ऐसा लाभ उस पत्थर की तरह है जो डूबने वाले के गले में लटका होता है, वो उसको डूबने में अधिक सहायता करता है, या डूबने वाले के सोने के भारी मुकुट जो है उसको अगर धारण कर किया हुआ है तो वो मुकुट उसके गौरव का चिन्ह नहीं बनता है, उसके डूबने का कारण बन जाता है। या वैसे है जैसे किसी सांप पर एक मणि होता है जो बड़ा आकर्षक दिखता है, लेकिन फिर भी सांप उस मणि के होने पर भी उसका दंश करने का और द्वेष करने का स्वभाव है वो नष्ट नहीं होता है। ये ज्ञान का होना उसी प्रकार से है जैसे कोई अभिनेता नाटक में कोई वस्त्र पहन लेता है जो वो नहीं है एक किरदार के रूप में, ऐसे बलराम जी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान की विद्या भी जो है आध्यात्मिक विद्या, भगवान को प्राप्त करने की विद्या, भगवान के शास्त्र का ज्ञान, ये भी अगर हम प्राप्त करते हैं उसके परिणाम के स्वरूप अगर हमारे व्यवहार में अंतर नहीं आता है, शिष्टाचार नहीं आता है हमारे अंदर, श्रेष्ठ व्यवहार, नम्रता, आदरपूर्वकता, द्वेष रहित भावना अगर उत्पन्न नहीं होती है तो हमारा सारा ज्ञान जो है एक तो व्यर्थ है और दूसरा हमारे पतन का कारण भी बन जाता है। केवल व्यर्थ ही नहीं है, हमारे पतन का, हमारे आध्यात्मिक स्थिति से नाश होने के लिए वो कारण बन जाता है। हमारे मंदिरों में सब जगह पर काउंसलिंग सिस्टम का भी निर्माण किया गया है, इसमें एक विशेष अंग है कि भक्तों को वैष्णव शिष्टाचार की शिक्षा देना कि कैसे एक वैष्णव को अपने आप को व्यवहार रखना है, मंदिर में, घर में, काम की जगह पर बड़ों से कैसा व्यवहार करना है, सन्यासी से, ब्रह्मचारी से, गृहस्थ से, भक्तों से, स्त्रियों से, पुरुषों से, बालकों से, विवाह में, ब्रह्मचारी आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, सन्यासी आश्रम में, हर प्रकार पे जहाँ जहाँ हमको व्यवहार करना पड़ता है वहाँ वहाँ वैष्णव के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए ही काउंसलिंग सिस्टम बनाया गया है जो गृहस्थों में भी उपलब्ध है, ब्रह्मचारी आश्रम में भी उपलब्ध है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारे अंदर वैष्णवों का वैष्णवों का जो ज्ञान है, भक्ति ज्ञान है, वो कहाँ तक हमारे जीवन में हमने उतारा है उसका प्रमाण है वैष्णव शिष्टाचार। जब तक हमारा वैष्णव शिष्टाचार श्रेष्ठ नहीं होता है तब तक हम कह सकते कि हमने अभी तक भगवान की भक्ति को समझा ही नहीं। हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आप वैष्णव शिरोमणि हैं क्योंकि आपका आचार जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सारे भक्ति के जो सार और मूल्य है वो अपने जीवन में आपने व्यवहार में उतारे हुए। केवल बुद्धि के स्तर पर समझकर कुछ लाभ नहीं है, जब हमारी क्रियाओं में, हमारे विचार में, हमारे चेतना में, भावना में जब ये मूल्य नहीं उतरते हैं तब तक हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। तो इस बात को समझते हुए बलदेव जी ने यह तय किया कि इसकी मृत्यु का दंड इसको देना आवश्यक है, क्योंकि बहुत देर होने पर भी रोम मास्टर सूत अपने आसन पर बैठे रहे। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए, एक श्रेष्ठ आदर्श स्थापित करने के लिए, और आदर्श व्यवहार क्या होता है ये सब आम जनता के लिए, वैष्णवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए बताने के लिए उन्होंने वहाँ से एक जो कुश घास जो है, जो वराह देव के शरीर के द्वारा जो जल निकाला गया उसके द्वारा वो पृथ्वी पर उसका निर्माण हुआ है। वो कुश जो होता है उसमें यज्ञ में हम उस पर बैठते हैं, उस कुश का जो अंगूठी जो है वो यज्ञ के नाम पे पहनते हैं रिंग फिंगर में। ये कुश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो मतलब क्या होता है, एक सिंपल वस्तु उन्होंने उठाई कुश घास के रूप में और उन्होंने जाकर केवल उसके गले को स्पर्श की और एक क्षण में रोमर्शन शोध का देहांत हो गया। तो ब्राह्मणों ने बहुत दुख व्यक्त किया कि हे बलराम जी, आप परम भगवान हैं, हमने इनको दीर्घ आयु का वरदान दिया था, बिना अवरोध यज्ञ करने का वरदान दिया था, सारे इंद्रियों को शक्ति अनंत रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया था, अभी विश्व कल्याण के लिए कौन यज्ञ करेगा, और आप परम भगवान हैं, आपका व्यवहार श्रेष्ठ है, हम आप पर विश्वास रखते हैं, लेकिन अभी हम आगे कैसे बढ़ें। तो बहुत चर्चा होती शास्त्र के रूप में और उसका अंजाम ये निकलता है कि बलराम जी अपने दिव्य बुद्धि के आधार पर ये उसका उपाय बताते हैं कि उनका जो पुत्र है उसी को इस स्थान पर बिठाया जाए, उग्र श्रवा सूतक, क्योंकि पिता जो पुत्र जो होता है वो पिता का प्रतिनिधि माना जाता है और एक दृष्टि से पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। तो हम आपके सारे वरदान जो आपने उनको दिए थे ये इन पर ट्रांसफर कर देते हैं, उनकी इंद्रियों में शक्ति होगी चिरंतन काल तक, उनमें ज्ञान होगा, दीर्घ आयु होगी, बिना अवरोध वो यज्ञ और अनुष्ठान संपन्न कर सकेंगे, तो इस प्रकार से हमारा प्रायश्चित भी हो जाएगा और आपका कार्य जो है विश्व कल्याण के लिए वो भी अबाधित रहेगा। तो फिर भी और ब्राह्मणों को पूछते हैं कि मेरे लिए और प्रायश्चित क्या करना चाहिए, आप बताइए, आपके आनंद के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हूँ। इससे बलराम जी ये साबित करते हैं कि वो ब्राह्मण के बहुत आदर करते हैं और ब्राह्मण वर्ग जो वैष्णव वृंद जो है वो विश्व के लिए आशादायक स्थान है। तो वो कहते हैं कि हमारे यज्ञ में जब हम यज्ञ करते हैं तो बिलवल नाम का राक्षस है, जो इलवल नाम के राक्षस का पुत्र है, वो हमारे यज्ञ में हमेशा मल मूत्र ऐसे गंदी वस्तु डालकर हमारे यज्ञ को भंग कर देता है, सभी ऋषि मुनियों को वैष्णवों को परेशान करता है, आप उसका वध करेंगे तो हमारा यज्ञ अनुष्ठान अच्छी तरह से चलेगा और विश्व कल्याण के लिए इसकी सहायता होगी। तो फिर बलराम जी तुरंत ही यज्ञ स्थल में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आकाश से यज्ञ शुरू होते ही बिलवल नाम का भयंकर राक्षस, इसकी लाल लाल रंग की कार्बन जैसे कि लोहे की रस की तरह उनकी आंखें हैं और लाल रंग की उनकी दाढ़ी और भयंकर दिखाई पड़ता है, जैसे कि कार्बन होता है ना कार्बन, ऐसे भयंकर उसका रंग होता है। तो ऐसा भयंकर स्वरूप में आकाश में आकर त्रिशूल धारण करते हुए वो दूसरे हाथ से मल मूत्र विष्ठा खून पसीना और पस यानी कि मवाद ऐसे गंदी वस्तुएं को यज्ञस्थली पर प्रहार करता है। उससे तुरंत भगवान अपने हल को और गदा को आह्वान करते हैं और दोनों तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। जब वो आकाश में घूमते रहता है सब ये गंदा काम करते रहता है तो भगवान बलराम हल से उसको नीचे खींचते हैं और दूसरे हाथ के गदा से सर पर प्रहार करते हैं और तत्क्षण उसका वध हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ये बहुत ही क्या कहते हैं इसको, बहुत रोचक टेक्निक है उनका। हाँ, अपने हल के द्वारा उनको नीचे खींचते हैं आकाश से और दूसरे हाथ से गदा से उनको सर पर प्रहार करके, जैसे इंद्र वज्र से पहाड़ पर प्रहार करता है और पहाड़ टूट जाता है उस प्रकार से, और कभी कभी पहाड़ से तप्त मैंगनीज की नदी बहती है जब पहाड़ भंग हो जाता है, उस प्रकार से खून की नदी उस सर से बहती है जब से पहाड़ टूट जाता है, उसी तरह से भयंकर ध्वनि करके ये राक्षस जो है वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी ये है बलराम जी का दिव्य बल और यही बलराम जी कलयुग में भगवान कृष्ण के साथ में चैतन्य महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। सांगो पंगास्त्र पार्षदम, मतलब कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, श्लोका कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तनाय प्राय यजन्ति हि सुमेधसः, इज दैट राइट। तो इसका अर्थ है कि इस अवतार में कृष्ण भगवान कोई शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करते हैं, उनके जो साथी हैं वही उनके अंग है, वही उनके उपांग है, वही उनके अस्त्र है और एक दिव्य अस्त्र साथ में लेकर आए हैं, वो है हरिनाम का अस्त्र। और इस अस्त्र के साथ में वो किसी का वध नहीं करते, पहले अवतार में कृष्ण भगवान ने कंस, रावर्त, शक्रासुर, पुतना, केशी, अरिष्टासुर नाम के भयंकर भयंकर राक्षसों का बहुत ही लीलया सहजता से वध किया है और पृथ्वी को राक्षसों के आतंक से बचाया है। कई बार उन्होंने माफ़ नहीं किया, रावण को भी माफ़ नहीं किया है, सीता का हरण किया है तो रावण का उन्होंने वध किया है, कुंभकर्ण, रावण, अक्ष कुमार ऐसे भयंकर राक्षसों का वध किया गया है। हर अवतार में नरसिंह के अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया है, वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया है और हर अवतार में संभवामी युगे युगे आकर राक्षसों का वध करते हैं। परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए वो राक्षसों का नाश करते हैं। लेकिन वही भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्व प्रभाव से संपन्न है, वो भगवान कलयुग में जब आते हैं तो किसी का वध नहीं करते। उनके साथ में आए हैं नित्यानंद प्रभु, बलराम जी के रूप, बलराम जी के अवतार, और क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास ठाकुर के साथ में घरों घरों में जाते हैं। जार देखो तारों को हो कृष्ण उपदेश, हर व्यक्ति को भगवान की शिक्षा देने के लिए, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्णा कौरव श्री कृष्ण कहो कृष्ण शिखा, केवल लोगों को विनती करते हाथ जोड़कर। परम भगवान दरवाजे पे आते हैं गृहस्थों के और हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कृपा करके हरि का नाम लो, कृपा करके कृष्ण का नाम लो, वही आपके पिता हैं, वही आपके माता हैं, वही आपके बंधु हैं, वही आपके सर्वस्व है, वही आपके धन प्राण है, वही आपके जीवन का उद्देश्य है, उनका नाम ग्रहण करके अपना जीवन को धन्य कीजिए। फिर भी कुछ गृहस्थ लोग उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया करते थे। अभी आप सोचें, बलराम जी को जब दुर्योधन ने कुछ गलत शब्द कहे तो तुरंत हल उठाकर उन्होंने हस्तिनापुर को पृथ्वी से उखाड़ दिया और दुर्योधन की मति को जगह पर लाया। वो तो जूती को, जूती का उपमा दे रहे थे यदुकुलों को कि वो सर पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं, तो दुर्योधन को अपनी जगह दिखा दिया उन्होंने तुरंत ही, एक क्षण के अंदर, एक क्षण के अंदर दम्भ और गर्व का परिवर्तन हाथ जोड़ के नम्रता में हुआ तुरंत। वही भगवान दरवाजा मुंह पर बंद करने के बाद में क्या करते हैं, फिर दरवाजा खटखटाते हैं, फिर वह गृहस्थ दरवाजा खोलते हैं और इस समय केवल हाथ नहीं जोड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने मुख में एक तृण को धारण करते हुए, गले में कपड़ा बांधते हुए, मुख में तृण धारण करते हुए, दांतों में दंते तृण धौरी दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर से विनती करते हैं, आप 10 बार 100 बार 1000 बार हमारे ऊपर दरवाजा बंद कर सकते हैं लेकिन आप हरि नाम का स्वीकार कीजिए, ये आपके कल्याण की बात है। ये उनकी नम्रता है। और वही निताई नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ जब घूम रहे थे गांव गांव में, हर गृहस्थ के दरवाजे में जाकर विनती करते थे, बहुत सारे लोग नाम लेते भी थे, बहुत सारे लोग नाम लेते भी नहीं थे, फिर भी आंखों में आंसू लेकर उनको विनती करते थे, कृपा करके भगवान के नाम के महामंत्र को स्वीकार कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशम नामनाम कलि सर्व कल्मष नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कलि संतरण उपनिषद में कहा है कि इस महामंत्र को 16 अक्षरों के अंदर इतनी शक्ति है कि कलयुग के सभी दोषों को कलमशों को ये नाश कर सकता है। अगर आपने वेद पढ़ा है तो सारे वेदों को ढूंढ सकते हैं आप, अगर आप वेदों को निचोड़ देते हैं तो सार के रूप में नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते आपको ये हरे कृष्ण महामंत्र मिलेगा, भगवान का दिव्य नाम, श्री कृष्ण दिव्य नाम ये प्राप्त होगा। इसी सार को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान जो हलधारी है, गदाधारी है, सर्वशक्तिमान है, सारे विश्व को एक नज़र से नष्ट कर सकते हैं, ऐसे बलशाली होने पर भी हाथ जोड़कर एक भक्त के रूप में विनती कर रहे हैं। फिर जाते हैं मार्केट में तो वहाँ पर जगाई मधाई आतंक मचा रहे हैं, इतने पापी थे वो जगाई मधाई, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के पश्चात भी इतना पाप करते थे, ऐसे कहा गया है कि वो जो दोनों मिलकर एक दिन में पाप करते थे वो पूरे विश्व के हम सब लोग मिलकर हमारे पूरे लाइफ में नहीं कर सकते, इसे एक दिन में करते थे। हर दिन में नशा करने का उनका कोटा हुआ करता था, कितने स्त्रियों पर बलात्कार करना है उसका एक कोटा हुआ, कितने लोगों को लूटना है, कितने लोगों को मारना है, कितना मांस खाना है, इस प्रकार के भयंकर कार्य वो दिन में करते थे और रोज शराब का मटका लेकर मार्केट में जब घुसते थे तो मार्केट में बाजार की जगह पर आतंक मचता था। आज तक का जो हम आतंक देखते हैं आजकल बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह को, वो उसके सामने बिल्कुल तुच्छ था। इतना भयंकर आतंक वो और भय हाहाकार उसने उन्होंने मचा के रखा था। और उनको देखकर भगवान का अगर अवतार सामने है तो उनका कर्तव्य क्या है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुश्रुतम। ये सब लोग भक्तों के भक्ति में बाधा ला रहे हैं और कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं, उनका तत्क्षण वध करना चाहिए और सब लोगों को उनसे बचाना चाहिए। लेकिन नित्यानंद जी कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए हैं, अलग भाव को धारण करके आए हैं। वो क्या सोच रहे हैं, अगर ये दो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के कृपा के प्राप्त हो जाएंगे, ये दो लोग भक्त हो जाएंगे, तो सही रूप में चैतन्य महाप्रभु का अवतार पतित पावन कहने के योग्य हो जाएगा और चैतन्य महाप्रभु के पतित भावत के रूप में प्रसिद्धि हो जाएगी और ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है वो सब जगह फैल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग और थिंकिंग फ्रॉम द नीज। तो ये जो अवधूत की विचारधाराएं हैं ये नित्यानंद जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर के साथ में जा रहे हैं तो मार्केट में घुसकर इनको कहते हैं कि आप हरिनाम लीजिए, आप भगवान के नाम को लीजिए, आप पाप कर्म को छोड़ दीजिए। ये सुनते ही जगाई माजाई को बड़ा क्रोध आता है और वो उनके ऊपर प्याला लेकर मारने को भागते हैं। तो हरिदास ठाकुर उनको खींच खींच कर दोनों भाग के वहाँ से दूर जाते हैं। और शाम को जो चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो इनका रिपोर्ट देते हैं कि आज हमने क्या क्या सेवा किया, कहाँ किस किस जगह पर गए, कितने घरों में गए, कितने लोगों को हरिनाम दिया, कितने लोगों का उद्धार किया। तो उसमें हरिदास ठाकुर व्याकुल होकर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, हे महाप्रभु जी, हे गौरांगा, नित्यानंद प्रभु के साथ में जाना एक बहुत डेंजरस बात है। ये कहाँ जाएंगे, किन लोगों को हरिनाम के बारे में बताएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज वो महापापी जगाई मजाई को जाकर भी बोलने लगे, सबके सामने मृत्यु को आह्वान दे रहे थे मानो। तो इनके साथ में जाना बहुत डेंजरस है। तो नित्यानंद प्रभु जब ये सुनते हैं तो और मन में निश्चय कर लेते हैं कि कल मैं महाप्रभु जी के कृपा को पात्र बनाने के लिए इनको भक्त बनाऊंगा। और फिर उस निश्चय से वापस बाहर निकलते हैं और हरिदास ठाकुर उनको रोक रहे हैं, मत जाओ, फिर भी उनके सामने चले जाते हैं और कहते हैं कि आप भगवान का नाम लो, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्णा कहो कृष्णा करो कृष्ण शिखा। तो ये सुनकर उनको और गुस्सा आता है, इनकी ये साहस, कल हमने इनको मारने का प्रयास किया, आज फिर हमारे सामने आने का साहस कर रहे हैं, मृत्यु दंड है इसका एक ही परिणाम हो सकता है। तो वो जिस मटके से वो शराब पी रहे थे उस मटके से जो जगाई है मधाई है, माधवानंद उनका पहले नाम था, मधाई उस प्याले से उनके जान से मारने के लिए उसके सर पर इसका प्रहार करते हैं। और जो अनंत शक्तिमान है वो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं लेकिन बेहोश हो जाते हैं, उनके सर से खून बहने लगता है और बेहोश अवस्था में भी फिर से उठते हैं, फिर चरणों को पकड़ते हैं मधाई के, कहते हैं आप मुझे एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार मार सकते हैं, 100 बार में खून से लथपथ हो सकता हूं लेकिन आप हरिनाम का स्वीकार कीजिए। देखिए कोई व्यक्ति अगर कमजोर है और नम्र बन जाता है तो उसको नम्रता नहीं कहते, वो तो सत्य है कि वो कमजोर है। देखिए अगर हाथी चींटी के सामने हाथ जोड़कर कुछ कहता है तो वो कह सकते हैं कि वो सच्चा नम्र होती है, क्योंकि उसके अंदर चींटी को नष्ट करने की शक्ति है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फिर भी इतनी शक्ति होने पर भी अहंकार न करते हुए वो हाथ जोड़कर विनती करें। सच्ची नम्रता का यही लक्षण है। तो नित्यानंद प्रभु जो विश्व के नकाशे से हस्तिनापुर को उखाड़ सकते हैं, जो एक तृण का पत्ता स्पर्श करके रोम और संस्कृत को मार सकते हैं, वो यहाँ पर जगाई माता को भी ये तृण का पत्ता उठाकर मार सकते थे, नष्ट कर सकते थे, उनका विनाश कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ जोड़कर उनको विनती की। उतने ही क्षण में हरिदास ठाकुर खबर पहुँचाते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि जगाई मजाई के द्वारा नित्यानंद प्रभु को जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो तत्क्षण चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हो जाते हैं, क्रोध से लाल आंखें लेकर चक्र चक्र करके आह्वान करते हैं और उनके उंगली पर तत्क्षण चक्र उत्पन्न होता है, प्रकट हो जाता है। और वो उस चक्र से मजाई का सर काटने वाले थे, चक्र को छोड़ने वाले थे, उस समय बेहोशी में ग्लानी में जो पड़े हुए थे नित्यानंद प्रभु, खून से लथपथ, वो फिर से जगकर प्रयत्न से होश में आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और चरण पकड़ते हैं उनके। नहीं नहीं महाप्रभु जी, नहीं गौरांगा, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि आपका अवतार ही पापी लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। दीन हीन यता चिलो हरिनामा उद्धार लो, आपका अवतार इनके उद्धार के लिए हुआ है। अगर इनका आप वध करेंगे तो कलयुग के मानो सभी लोगों का आपको वध करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे तरीके से, छोटे मोटे प्रमाण से सब लोग जगाए मजाए की तरह है। तो कैसे आपका जो अवतार का मिशन है वो सिद्ध होगा, कैसे आप पतित पावन के रूप में लोग आपको मानेंगे और कैसे हरिनाम लोगों तक पहुंचेगा? तो ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की परम करुणा को देखते हैं, उनका हृदय भी द्रवित हो जाता है। एक तरफ उनके मन में क्रोध है कि मेरे भक्त का इन्होंने अपमान किया, भगवान अपने भक्त का अपमान और अपराध कभी सहन नहीं करते हैं, खुद के ऊपर का अपमान सहन कर सकते हैं, माफी कर सकते हैं उसको, लेकिन भक्त का अपराध, वैष्णव अपराध भगवान कदापि सहन नहीं कर सकते हैं। उसका दंड देने के लिए उनका मन आतुर हो रहा है, लेकिन उनका जो दंड देने की प्रवृत्ति उनकी है वैष्णव अपराध करने पर, उसको भी नित्यानंद प्रभु की जो कृपा और करुणा और प्रेम है उनका, वो मात दे रहा है, परास्त कर रहा है चैतन्य महाप्रभु के दंड देने की भावना को। और ये करुणा देखकर चक्र जो है उसके उनके हाथों से निकलता ही नहीं है और वापस चला जाता है। और ये करुणा देखकर जगह देख रहा है, मजाई भी देख रहा है कि हमारा वध निश्चित है, हमारे सामने मृत्यु खड़ी है, चक्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु हमका तत्क्षण वध करने वाले हैं। तो वो भी भयभीत होकर मृत्यु को सामने देकर चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर जाते हैं। और उस समय जब दोबारा उसके पहले एक बार प्रहार करने के बाद में फिर दोबारा नित्यानंद प्रभु, जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर जब मधाई हमला करने का प्रयास करते हैं तो जगाई उनको रोकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं इतने करुणामय व्यक्ति हैं, प्याले का मटके का प्रहार सहन करने के पश्चात भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, कितनी करुणा है इनके मन में, और मधाई को रोकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दोनों जब चरणों में गिर जाते हैं तो जगाई को गले लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने किस हद पर, किस स्थिति में नित्यानंद प्रभु की सेवा की है, उन पर होने वाला दूसरा प्रहार उन्होंने बचाया है, इसी को चैतन्य महाप्रभु भक्त की सेवा, नित्यानंद प्रभु की सेवा मानते हैं और उनको पहले गले लगा देते हैं और उनको बोलते हैं कि हम आपको माफ़ करेंगे, क्योंकि वो माफ़ी की याचना करते हैं, कृपा की याचना करते हैं, दया की याचना करते हैं, हमको ज़रूर माफ़ करेंगे, लेकिन हमसे आपके वादा लेंगे कि आज से आप एक भी पाप कर्म नहीं करेंगे, नो सिंफुल एक्टिविटीज़। ये जब देखते हैं, जैसे ही गले लगाते हैं तो जगाई का सारा पाप जो है वो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रवेश करता है और उनका गौर वर्ण जो है वो नीला और काला हो जाता है, क्योंकि उनका पाप स्वीकार करते हैं। उनके इतने पाप थे कि यमराज के यमदूत जो थे वो 24 आवर्स काम कर करके थक गए थे, यमलोक में जमीन में गड्ढा बना बना कर उनके पाप का रिकॉर्ड वो स्टोर कर रहे थे, जगह नहीं थी उनके पास, सारा स्टाफ इनके पापों का रिकॉर्ड रखने में व्यस्त हो गए थे। जब मधाई ये देखते हैं तो वो भी चैतन्य महाप्रभु विनती करते हैं कि हम पर भी कृपा कीजिए। उन्होंने कहा आपको हम कृपा नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, अगर आपको कृपा माफ़ी चाहिए तो सबसे पहले आपको नित्यानंद प्रभु की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उनका अपराध किया है। तो वो नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मुझे इस प्रहार की कोई परवाह नहीं है, आप चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त कर रहे हैं ये मेरी सबसे बड़ी बात है। जैसे नित्यानंद प्रभु उनको माफ़ कर देते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको भी गले लगा देते हैं और उनके भी सारे पाप नष्ट होकर दोनों जगाएं या बधाई परम भक्त बन जाते हैं। उनके हृदय में तत्क्षण कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम लहरों की तरह उमड़ पड़ता है। क्या कृपा है, देखिए आप पापों को नष्ट करने के लिए आपको अनंत काल तक नरक में जन्म लेना पड़ता है, यातना भुगतनी पड़ती है, पृथ्वी पर आकर निम्न योनियों में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है, अनंत अनंत जन्मों तक एक जन्म के पापों को पूर्ण करने के लिए यातना भोगनी पड़ती है, और ये सारा करने के बाद में तपस्या करनी पड़ती है, अनर्थों को नष्ट करना पड़ता है, पाप के फलों को नष्ट करने के साथ साथ पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, दान पुण्य करना पड़ता है, कर्मकांड करना पड़ता है, तीर्थयात्रा करनी पड़ती है। ये सारा जो लंबा प्रोसेस है वो नित्यानंद प्रभु की परम करुणा के कारण एक क्षण के अंदर समाप्त हो गया। और उनका जीवन का जो प्लेटफॉर्म है वो जीरो लेवल पर नहीं आया। तत्क्षण उसके साथ साथ उनके हृदय में भगवत प्रेम भी जागृत हुआ और प्रचुर मात्रा में विवल हो गए वो भगवत प्रेम के भावना से। एक क्षण के अंदर शुद्ध प्रेम की भावना का अनुभव करने लगे वो, उनके आंखों से अश्रु बहने लगे भगवत प्रेम के कारण। ये चमत्कार केवल नित्यानंद प्रभु के कृपा का परिणाम। जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम में थे अपने जन्म स्थान पर, तभी वो एक बार उन्होंने कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि वहां के जो बालक थे वो 3 महीने तक दिन रात अखंड भूख प्यास और नींद भूलकर अखंड कीर्तन करते रहे। उनको होश ही नहीं रहा कि शरीर कहाँ है, उनका मन कहाँ है, और भूख लग रही है कि तहान प्यास लग रही है, नींद आने वाली है, सब कुछ भूलकर 3 महीने तक 180 दिन और रात उन बालकों ने अखंड कीर्तन किया अति आनंद का अनुभव करते हुए। और एक बार उन्होंने ऐसे देखा, अपनी कृपा दृष्टि को ऐसे डाल दिया लोगों के ऊपर, तो जैसे पत्ते होते ना, हम लोग खेलते हैं पत्ते, उसका बंगला बनाते कभी कभी, और एक पत्ते को ऐसा हाथ लगाते तो सारे पत्ते लाइन से गिर जाते हैं, वैसे जैसे ही उनकी कृपा दृष्टि पहले व्यक्ति पर पड़ी तो वो बेहोश होकर गिर गया, अगला व्यक्ति ऐसे भगवत प्रेम में व्याकुल होकर विवल होकर सारे लोग वहाँ पर बेहोश हो गए। ये समझना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, इसके लिए थोड़ा बहुत भक्ति हमारे जीवन में हमको अपनाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नित्यानंद प्रभु की लीलाएँ अनंत हैं, और नित्यानंद प्रभु इतना बल होने पर भी वैसा करुणा का अस्त्र लेकर कलयुग में आते हैं, केवल हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए। कलयुग के हम सब लोग जो हैं वो सब दुर्गुणों से भरे हुए हैं, कलिर दोषे निधे राजन। हाँ, भागवत में कहा है कलि तो दोषों का एक सागर है, हम सब भी एक दोषों का सागर है, हर एक व्यक्ति। कोई सद्गुण नहीं है, कोई स्मृति नहीं है अच्छे गुणों लोगों की, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, सदाचार सद्व्यवहार सद्गुण हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, और जो भी है वो नष्ट हो रहे हैं कलयुग के प्रभाव से। सब लोग कलह में फंसे हुए हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रहे हैं, वाद विवाद तंटा आतंक मच रहा है, और सब लोग दम्भ से भरे हुए, कुछ भी ना होते हुए सब लोग गर्व कर रहे, अपने मिथ्या पद को मिथ्या स्थिति को प्राप्त करते हुए गर्व कर। ऐसी भयंकर स्थिति में अगर भगवान शस्त्र लेके आते हैं तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहा, तो उनको सबका वध करना पड़ेगा, क्योंकि जो द्वापर के और त्रेता के राक्षस हैं उससे भी हम लोग भयंकर लोग हैं। आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं व्यास पीठ पे बैठकर आप? हाँ, हम तो सब प्रवचन सुनने के वहाँ यहाँ पर आए हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमारी स्थिति जो है कि कितनी पतित है और कितनी होपलेस है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने आप को हम ऐसी अवस्था में महसूस नहीं करते हैं तब तक भगवान की कृपा को हमारी ओर हम आकर्षित नहीं कर सकते, और ये नम्रता जो है यही हमारी भक्ति की कीमत है। जब तक ये असहायता और नम्रता हमारे अंदर नहीं उत्पन्न होती है तब तक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा का जो दृष्टि है वो हमारे ऊपर नहीं गिर सकती। और इतना सब पतित होने पर भी अगर हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को हमारी ओर आकर्षित करते हैं तो हम ये सभी पतित अवस्था से तत्क्षण मुक्त होकर भगवान की दिव्य प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, जैसे जगाई मदाई जैसे लोगों ने किया है। और नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो स्वयं बताते हैं। एक बार अगर किसी व्यक्ति की आंखों से अश्रु की एक बूंद अगर भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए मैं देखता हूँ तो उसका मैं दास बन जाता हूँ, ये नित्यानंद प्रभु का हमारे लिए ऐलान है, घोषणा है। इसमें ही सब जीवन का सार छुपा हुआ है। वो कोई बड़ी तपस्या की अपेक्षा नहीं करते हैं, कोई बड़े ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते हैं, बड़े दान पुण्य बड़ा प्रवचन और बड़ा ब्राह्मणिकल कार्य यज्ञ अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कृष्ण का नाम लेते हुए कृष्ण को पुकारते हुए अगर किसी की आंखों के एक कोने में अगर मैं एक बूंद अश्रु देखता हूँ तो मैं उसका दास बन जाऊँगा, यानी कि उसको अपना बना लूँगा, मैं उनका हो जाऊँगा, उनको अपना बना लूँगा। और चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्ध करके बताया है हमारे लिए कि जो व्यक्ति मेरे निताय की कृपा का पात्र हो जाता है उस पर मैं भी कृपा करूँगा। और कृपा का मतलब क्या है? राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम प्रेम की लीलाएं हैं उनका अर्थ समझना और स्वयं अपने हृदय में भगवत प्रेम जागृत करना। प्रभुपाद जी बताते हैं अगर राधा कृष्ण की लीलाओं का रहस्य हमको समझना है और ब्रज भक्ति में हमको प्रवेश करना है तो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से, बिना बलराम की कृपा से हमारी कोई चारा नहीं है। वैसे नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार। मुझे बार बार ये बोलने का मोह हो रहा है आपको कि सर्वशक्तिमान होने पर भी वो सब अपमान सहन करते हैं, मार खाते हैं और प्रेम देते हैं। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे थोड़ी शक्ति होती है तो हम कितना समझते हैं, इतना हमको असह्य होता है अपमान, तुरंत हम लोग उसका बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं। यहाँ पर परम शक्तिमान होने पर भी, भगवान के शक्ति का मूल उगम होते हुए भी बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में मार खा रहे हैं। मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है, एमोने दयाल तो नहीं है, ऐसा दयाल, ऐसा दयालु पूरे विश्व में, पूरे निर्माण में कोई नहीं है, ऐसे वैष्णव भक्त कहते हैं। तो इतना होने पर भी अगर हम इनके द्वारा जो कृपा प्राप्त है भगवान नाम वो नहीं स्वीकार करते हैं तो कौन हमारे से अधिक दुर्भाग्य हो सकता है, इससे अधिक दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनी न अनुरागः, इतना सब होने पर भी अगर हम भगवान के नाम को हमारे जीवन में नहीं स्वीकार कर सकते हैं और अपने पद का गौरव करते हैं, अपनी डिग्री का गौरव करते हैं, अपने पोजीशन का, अपने प्रभाव का, अपनी सुंदरता का, अपने धन का गौरव गर्व करते हैं तो हम जैसा दुर्भागी और कोई नहीं, क्योंकि हमारा सारा धन, हमारी पोजीशन, सुंदरता सारा भगवान के द्वारा दिया गया है, हमारा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। जो देता है वो छीन भी सकता है। आज सुंदर है तो अगले जन्म में हम कुरूप बन सकते हैं, चूहा बन सकते हैं अगले जन्म में, किस पर गर्व करने के बाद। तो चूहा भी कभी इंसान था, पाप करके चूहा बन गया। तात्पर्य यह है कि हमें अगर बलराम जयंती का सही लाभ लेना है तो उनका जो कलयुग का अवतार नित्यानंद प्रभु है उनकी कृपा का रहस्य समझना बहुत जरूरी है। और कृपा का रहस्य एक ही है, भगवान नाम, कृष्ण नाम को ग्रहण करना। हम किसी अगर विशेष मंत्र से अटैच नहीं है तो हमको चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग का ये महामंत्र हमको दिया है। महामंत्र यानी ऐसा कोई ध्वनि नहीं है जो कलयुग के सारे कलमशों को नाश कर सकता है। ये मन को सारे त्रासों से, सारे कष्टों से, सारे पीड़ाओं से, सारे विकारों से मुक्त करने की शक्ति रखता है। ये भी तत्क्षण, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो मन, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इस सारे स्तरों को पार करके तत्क्षण आत्मा के सर पर अपने आप को पाते हैं और आत्मा के सर पर जो दिव्य आनंद है उसका तत्क्षण अनुभव करते हैं। दिव्य आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लेजर तत्क्षण व्यक्ति सबसे पापी अवस्था में भी भगवान का नाम लेने पर अनुभव कर सकता है। इससे और लाभ क्या चाहिए, ना योग की जरूरत है, ना प्राणायाम करने की जरूरत है। पहले शरीर शुद्ध करो, फिर मन को नियंत्रित करो प्राणायाम से, फिर ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ऐसे लंबा चक्कर करने के बदले में तत्क्षण अगर हमको दिव्य आनंद की अनुभूति करनी है तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद परम करुणा वाले जो दिव्य व्यक्ति हैं वो हमको इस महामंत्र को दे रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी अपनी प्रार्थना में बलराम जी को वंदन कर रहे हैं। वो कहते हैं जो बलराम जी जिनकी सुंदरता उनके गालों में जो कुंडल है उनके गालों को स्पर्श कर रहे हैं, प्रकाशमान है, उनके चेहरे को सुशोभित कर रहे हैं, जिनका चेहरा कस्तूरी से बने हुए तिलक से सुशोभित है, जिनका वक्षस्थल विशाल है और वक्षस्थल पर गुंजमाला शोभायमान है, जिनका रंग शरद ऋतु के बादल की तरह है, जो नीले रंग की धोती कृष्ण के स्मृति में रहने के लिए पहन रहे हैं, जिनकी आवाज़ बड़ी गंभीर है और जिनकी बाहु उनके घुटने तक पहुंच रही हैं, ऐसे दिव्य कृपामयी करुणामयी बलराम जी को मैं आश्रय ग्रहण करने की अभिलाषा व्यक्त करता हूँ, जो मुझे कृपा करके उनके चरणों में आश्रय दे दे। बलराम जी नायम आत्मबलहीने न लभ्या, उनकी कृपा के बिना हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। वो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने से हम विकारों को नष्ट कर सकते हैं और भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद जो है उसकी अनुभूति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम श्री बलराम जी के लीलाओं को और उनको स्वयं सुबह और शाम याद करते हैं तो हम सब लोग महान भक्त बन जाएंगे और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे जो श्री कृष्ण प्रेम है। अगर हमें राधा और कृष्ण की लोटस चरण कमलों का प्राप्त करना है, ब्रज भक्ति में प्रवेश करना है, तो हमें ये केवल हमारे जीवन में बलराम जी की कृपा प्राप्त करने पर ही मुमकिन हो सकता है। क्योंकि बलराम जी सबसे पतित और सबसे पापी लोग जो हैं उन पर प्रेम करते हैं, उनको आश्रय देते हैं। इसलिए हमारे लिए एक आशा है कि जब ये परम करुणामयी बलराम जी महाराज हमारी ओर करुणा से देखेंगे, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसाएंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री बलदेव महाराज की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की, यथाई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।